نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درس و تدریس کے آداب میں سے ہم آج پیج نمبر 65 پہ معلم کے طالب علموں کے ساتھ تعلقات اور ان کو ادب سکھانے کے سلسلے میں جو اگلی چیز آج ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے کہ طلباء کو کثیر الاستعمال قواعد و ضوابط بھی بتلائے جائیں، یعنی اسٹوڈنٹس کو اکثر استعمال ہونے والے رولز، ضابطے، زندگی گزارنے کے طریقے، کون سی چیزیں کہاں کام آئیں گی یہ بھی بتائیں. پہلے اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. استاد کو چاہیے کہ طلباء کے سامنے فن سے متعلق کثیر الاستعمال قواعد کا ذکر کرے، یعنی ٹیچر کو چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ عام طور پہ یوز ہونے والی جو فن سے مین ڈفرینٹ تھنگس ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں کام آتی ہے، ان کا بھی ذکر کرے. جیسے اصول ہے کہ زمان کے مسئلے میں مباشر کو سبب پر فوقیت اور ترجیح دی جائے گی، اور بینہ موجود نہ ہونے کی صورت میں مدعی علیہ پر قسم آئے گی. اب یہ چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ یہ مشکل ٹرمز ہے، لیکن اس کا یہ اصل میں عدالتی زبان میں ضمانت اور گواہی کے نامہ ناطے سے کچھ چیزیں بولی جاتی ہیں، اس کا مثال دے رہے ہیں یہ. اور قسامت کا مسئلہ اس سے مستثنا ہے. نیز قواعد سے مستثنا مسائل کا تذکرہ بھی کرے، یعنی مستثنا من ایگزیمپٹ. قواعد کہتے ہیں رولز کو اور مسائل کہتے ہیں پرابلمز کو. جیسے کسی امام کے کسی مسئلے میں دو کال ہوں، ایک ہی مسئلہ ہے اور اس پہ کسی امام کی دو باتیں مل رہی ہوں، ایک اس نے پہلے کہا ہو قدیم اور ایک جدید، یعنی ایک بات آج سے 8 سال پہلے کہی تھی اور ایک آج کہی، یا ایک پچھلے سال کے دورہ قرآن میں کہی تھی اور ایک اس سال میں کہی تھی، یا ایک 2 سال پہلے کی ٹیچنگ میں کہی تھی اور ایک آج کہی ہے. ہوتا ہے نا، وقت کے ساتھ علم مختلف اینگل ہوتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو قول جدید پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس استاد کے علم میں ایک نئی چیز آ گئی ہو، پہلے تک علم وہاں تک تھا، پھر اس کو ایک اور اینگل سے دیکھا، کچھ اور سیکھنے کا موقع ملا، کسی اور سے پڑھا، تو پھر جو بعد والی بات ہے اس پہ عمل کیا جائے. اسی طرح ہر وہ قسم جو دوسرے کے فعل کی نفی پر کھائی جائے وہ صرف علم کی نفی پر محمول ہوگی. البتہ اگر آقا کے خلاف دعویٰ کیا جائے کہ اس کے غلام نے کوئی جرم کیا ہے تو صحیح قول کے مطابق اس کی قسم حقیقت پر محمول ہوگی. نیز ہر ایسی عبادت جس میں اس کے منافی کو کوئی عمل کیا جائے تو وہ عبادت سے نکال دیا جاتا ہے، لیکن حج و عمرہ اس سے مستثنا ہے. اور ہر وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے، لیکن جو وضو غسل جنابت کے درمیان میں آ جائے تو اس میں ترتیب ضروری نہیں. نیز ان قواعد کے اصل سورسز کو بھی بیان کریں. ہر اصول کے لیے جس فن اور علم کی ضرورت ہو اس کا بھی ذکر کریں، جیسے علم تفسیر، علم حدیث، اصول دین، فقہ، نحو، صرف اور لغت وغیرہ. یہ تمام باتیں اس وقت ہیں جب شیخ ان فنون سے واقف ہو، لیکن اگر اس کو مذکورہ فنون میں سے جس فن میں رسوخ اور پختگی حاصل نہ ہو اس کا ذکر نہ کرے، بلکہ جس فن میں استحکام ہو، یعنی اب پورا ساؤنڈ نالج ہو، اس صرف اسی کا ذکر کرے. اسی طرح فن کے نادر مسائل اور فتاوی کا ذکر کرے اور ان کی خوب وضاحت کرے. اسی طرح وہ باتیں جن سے ناواقف رہنا ایک عالم فاضل شخص کے شایان شان نہیں، ان کو بھی ذکر کرے، جیسے مشہور صحابہ و تابعین، آئمہ المسلمین اور بڑے بڑے صوفیہ اور صالحین کے اسماء گرامی، اور خلفۂ راشدین، عشر مبشرہ، 12 نقیب، بدری صحابہ، کثیر الروایت صحابہ، عبادلہ، فقہ سبا، آئمہ اربع یعنی 4 امام اور 7 فقیہ، ان حضرات کے نام، کنیتیں، عمریں، تاریخ وفات، عجیب و غریب حالات اور واقعات اور محاسن اور صفات کا بھی تذکرہ کرے. اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے یہ ساری باتیں سن کے کہ نہ آپ کو ان کے نام سمجھ آ رہے ہیں نہ ان کی وجہ سمجھ آ رہی ہے. تھوڑا سا صبر اور کر لیں. اسی طرح طالب علموں کو فوائد کثیرہ حاصل ہوں گے اور ان کے آپس کے اختلاف کا تذکرہ کرنے سے پوری طرح ایوائڈ کریں، اس لیے کہ وہ لوگ دنیا میں دعا اور تعریف اور ذکر خیر کے مستحق ہیں اور آخرت میں عظیم اجر و ثواب کے لائق ہیں۔ ہاں جی، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں آپ کے لیول کی۔ اصل میں یہ کتاب آپ کو پتہ ہے کہ بیسیکلی عربی بک تھی، بہت پرانے دور کی چھپی ہوئی، اور اس دور میں علم کے معاملات تھوڑے مختلف تھے آج کے دور سے، اور خاص طور پہ جس ماحول میں آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں یا آگے جا کے آپ کو سنانا ہے، تو یہ ساری ٹرمز آپ کو مشکل لگیں گی، اس لیے ان کو ایوائڈ کریں۔ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ استاد صرف علم ہی نہ دے بلکہ باقی باتوں کی طرف بھی توجہ دلائے، کوئی مسئلہ بیان کرے تو اس کی دلیل بھی دے، اور دوسرے علم والوں کا تعارف بھی کرائے، ان کی نام تاریخیں یعنی ان کے بھی تذکرے کرے۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ کتاب کھول کے پڑھنا اور پڑھانا، آپ اس کو علم کہتے ہیں لیکن میں اس کو پورا علم نہیں کہتی۔ اس کتاب کو پورا ایک صفحہ پڑھ لیں، اس کے سارے لفظوں کے معنی بتا دیے جائیں، اس کی پوری اضافے بتا دیے جائیں، اینڈ آف دا ڈے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اصل میں علم کیا ہے؟ کیا آپ علم والوں کے سینوں کو کھلا کروا دیں، ان کو بات سمجھ آ جائے، وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے دین والوں کے ساتھ بھی اپنے تعلق کو اس طرح محسوس کرے جیسے کسی دین والے کا دوسرے دین والے سے ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے صحابہ کرام کی بات تھی۔ تابعین وہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ پھر آئمہ المسلمین، ہر دور کے آئمہ کرام جو اس امام تھے مسلمانوں کے۔ پھر بڑے بڑے صوفیہ، اب یہ صوفی کی ٹرم اس وقت ہمارے اس وقت ضرورت نہیں ہے اس پہ لمبی بات کرنے کی، پہلے دور میں صوفیہ کا لفظ کسی اور اینگل سے ہوتا تھا، آج کے دور کا لفظ صوفی کا مختلف ہے، اس لیے اس کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ صالحین کے اسماء گرامی، صالحین نیک لوگ، اسماء گرامی ان کے نام کیوں بتائے جائیں؟ تاکہ دین سیکھنے والے کا سینہ کھل جائے، اس کے دل میں وسعت پیدا ہو، اور وہ یہی نہ سوچے کہ جس سے میں دین سیکھ رہا ہوں یا جس کی بات میں سن رہا ہوں دنیا میں بس وہ ایک اکیلا انسان ہی ہے کہ جس سے علم لیا جا سکتا ہے یا جس کو علم دیا جا سکتا ہے یا جو علم کا سورس ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے استاد کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، یہ کہنے سے نہیں ہوتی، کوئی کسی کو کہہ کے محبت نہیں کروا سکتا۔ جس سے آپ کو فائدہ ملتا ہے اس کے لیے آپ دعائیں بھی کریں گے، ناممکن ہے کہ جس کو فائدہ ملے اور کوئی اس کے لیے دعا نہ کرے، دل سے نکلتی ہیں۔ اور جب کہ کوئی روحانی تربیت کرے، جب کہ اخلاق سکھائے، جب کہ آداب سکھائے، ہوتی ہے، دل بھی چاہتا ہے ملنے کو، انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، یہ سارے ہیومن فیکٹرز ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم والوں اور سچے دین کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اپنی ذات سے نہ جوڑے، دوسروں کے بھی نام بتائیں، دوسروں کے ساتھ بھی ان کا ذکر کریں، یہ گزرے، یہ اپنے دور کے لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے، یہ صحابہ کرام تھے، یہ عشرہ مبشرہ تھے، یہ فقیہ گزرے، انہوں نے دین کی بڑی خدمتیں کیں، یہ چار امام گزرے ہیں جن کو آج لوگ نام جن کے لے کے جھگڑتے ہیں، لیکن اپنے دور میں یہ واقعی بہت زیادہ دین کی خدمت کرنے والے تھے۔ یہ سب بتانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے لوگ پھر دین سے جڑیں گے، لوگوں سے نہیں جڑیں گے۔ آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم دین سے جڑنے کی بجائے، اللہ سے جڑنے کی بجائے لوگوں سے زیادہ جڑتے ہیں، ناموں سے جڑتے ہیں، گروہوں سے جڑتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ اور میں چونکہ اس وقت آپ کے سامنے ایک استاد کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سب کو بھی وہی نصیحت کروں گی جو مجھے اپنے لیے اچھا لگتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ علم خوب رسوخ حاصل کریں، جس کام کی اپنے کمٹمنٹ کی ہے اس کو جان توڑ محنت کر کے حاصل کریں، پورا حق دیں، راتوں کو جاگنا پڑے تو جاگیں، دن کو محنت کرنی پڑے تو کریں، اس سے خوب فائدہ لیں، اس نیت سے سیکھیں کہ میں نے کل دوسروں کو بھی دینا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کسی دین والے کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا، کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا۔ آپ کے دوستوں میں سے اگر کوئی کسی دوسری جگہ پڑھنے جاتی ہیں اور وہ اپنے کسی استاد کا ذکر کر دیں تو آپ آگے کہ نہیں تمہاری استاد نہیں اچھی، میری بہت اچھی ہیں۔ مجھے یہ کبھی سمجھ نہیں آتا کہ دو اچھے کیوں نہیں ہو سکتے، लोग एकदम कंपैरिजन में क्यों आ जाते हैं? किसी की तारीफ करें तो हमारे यहाँ मसला ये है कि ऐसे लगता है कि दूसरे सबकी बुराई हो गई। ये हमारा एक सोशल स्ट्रक्चर बन चुका। कोई बहू की तारीफ करे ना, आपकी बहू बड़ी अच्छी है, तो फौरन घर वाले बोलते हैं तो हमने इसको कौन सा दुख दिया हुआ है। मैंने लिटरली लोगों को इस तरह कहते सुना है। सास की तारीफ कर दें तो आपकी सास बहुत अच्छी है, तो फिर बहू बोलती हैं या घर वाले उसके बोलते हैं हमारी बेटी ने भी बड़ी जान मारी है, आपको क्या पता वो कितनी अच्छी है। क्या दो लोग अच्छे नहीं हो सकते? क्या ये ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि सास भी बहुत अच्छी है और माशाल्लाह बहू उससे भी अच्छी है? ये हौसले वाले लोग कहते हैं। दुनिया में तो शायद ये बातें समझ आ जाती हैं, लेकिन दीन के नाम पर अगर ऐसी बातें हैं तो इसका एक ही मतलब है कि इसके अंदर अभी दिल साफ़ नहीं हुआ, अभी प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल की ज़रूरत है। तो लिहाजा इससे बस आप अपने लिए इतनी ही बात समझ जाएं कि सिर्फ इल्म न दे, ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी सिखाए, डीलिंग सिखाए, बस बातें ऐसी भी सिखाए जिसको अनफॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस को जाहिर जिक्र करना या किसी ऐसी चीज़ का जिक्र करना कि जो बराह रास्त मज़मून में नहीं आ रही थी, अब लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है, तो फिर थोड़े से रेफरेंसेस और दे दे थोड़ी के, हाँ भाई यहाँ इतनी बात है, थोड़ी सी बात आपके फ़ायदे की ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। क्योंकि अब देखिए कि किसी को इल्म देना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक माँ अपने बच्चे के मुँह में जानबूझ के या अनजाने में कभी गलत चीज़ नहीं डालेगी, उसको भूखा नहीं रखेगी। वो ये नहीं कहेगी बच्चा एक ही चीज़ खाता रहे दूसरी ना खाए। अब देखें कि थोड़े लुकमे मुँह में डालती है ना खाने के, फिर उसको खुद ही पता चल जाता है कि अब इस मासूम को प्यास लगी होगी, फिर एक सिप पानी का देती है, फिर उसके बाद दो तीन नवाले खिलाती है। बच्चा तो नहीं मांगता पानी, माँ को पता होता है किस चीज़ की ज़रूरत है। इसी तरह उस्ताद को भी बच्चे की, स्टूडेंट की, चाहे वो उस उम्र में बड़ा है, चाहे उससे रुतबे में बड़ा है, लेकिन उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। आप सिर्फ रस्मी बातें करके स्टेज से उतर जाएं और लोग गुम गुम में हों, पता ही ना। मैंने देखे लोग कई कई साल कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन जब आप उनको नमाज़ पढ़ता देखते हैं तो नमाज़ ठीक नहीं होती। मैंने कई जगह ऐसी बात की नमाज के बारे में जब बताया, और इस तरह की वर्कशॉप बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि हम सब अपनी इस्लाह करते रहें, कहीं को कमी तो नहीं, कहीं कुछ नहीं। यकीन करें जब सुन्नत तरीके की नमाज को डिटेल से बताया जाता है तो वो लोग जो कई साल से कुरान पढ़े में, वो कहते हैं हमने तो ये बात नहीं सुनी, हमें तो नहीं पता। मैं कहती नहीं, आपके उस्तादों ने बताई होगी, आपने गौर से नहीं सुनी, ज़्यादा एम्फेसाइज़ नहीं किया होगा, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं अभी बेसिक लेवल पे तो हैं तो ठीक है। तो लिहाजा हर एंगल से सिखाना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे कैसा मामला करना है। फिर आप देखिए कि उस्ताद को इतना एतमाद देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि वो अपनी निजी ज़िंदगी का कोई मशवरा, कोई बात, कोई दुख, कोई सुख वो भी कर सकें, ताकि वो गलत काम ना कर लें। हम सोचते हैं कि किताबें पढ़ के जीना आ जाता है, जीना नहीं आता, जीने की तरफ रहनुमाई मिलनी शुरू हो जाती है। हम सोचते हैं किताब पढ़ के सारे गुनाह छूट जाएंगे, कोई नहीं छूटते, हाँ गुनाहों को छोड़ने का एहसास पैदा होता है, उसके बाद फिर तज़किया की ज़रूरत होती है। तो बहरहाल अल्लाह ताला तौफीक दे कि जब कभी भी हम दूसरे लोगों से बात करें तो फिर उसमें उनकी सारी ज़रूरियात, उनके हालात, उनको ज़िंदगी में इन असूलों को कहाँ लगाना है। एक मसला कॉमन मसला है, लेकिन उस बंदे को उसके हालात के मुताबिक कैसे फ़िट करना है ये भी बताना उस्ताद का फ़र्ज़ होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 11, तलबा के दरमियान मसावात का ख्याल रखे, यानी स्टूडेंट्स के दरमियान इक्वलिटी रखे, फेवरेटिज्म ना हो जिसको आप अपने लफ्ज़ों में कहेंगे। स्टूडेंट्स पर ये जाहिर ना हो कि उस्ताद किसी तालिब इल्म को ज़्यादा तरजीह देता है या इस पर ज़्यादा तवज्जो देता है या इसके साथ ज़्यादा ताल्लुक खातिर है। ताल्लुक खातिर में इनके उसका इंक्लाइनेशन, दिल का झुकाव, उस एसोसिएशन है आप ये कह लें, जबकि सब सिफात में बराबर हों, जैसे उम्र, फजीलत, दयानत और इल्म का हासिल करना। क्योंकि अगर उस्ताद किसी तालिब इल्म को बिला वजह दूसरों पर फजीलत देगा तो इससे दिलों में नफ़रत पैदा होगी। जैसे एक माँ अगर एक बच्चे को दूसरे पे प्रेफर करे तो फिर बच्चों में, अब देखिए कि बाज़ अवज़ सगे भाइयों के अंदर हसद और जलसी वाली कैफियत आने लगती हैं, तो ऐसा ना करें। लेकिन अगर कोई तालिब इल्म इल्म हासिल करने, मेहनत और जिद्दोजहद और हुस्न अदब वगैरह के अतबार से आगे हो तो इसकी फजीलत बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने इसके इकराम का सबब भी ज़रूर बताए। यानी अगर किसी स्टूडेंट की तारीफ़ करे तो साथ ये भी बताए कि इसकी तारीफ़ में क्यों कर रहा हूँ, इसमें क्या ख़ास बात है जो तुम में नहीं है। मसलन देखिए कि कोई के लिए, मुझे भी तो सबक पूरा ही आता था ना, उसको भी पूरा आता था, फिर आप उसकी ज़्यादा तारीफ़ क्यों कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि उसके खड़े होने का अंदाज़ अच्छा था, वो बड़ा हम्बल था, उसकी निगाहें झुकी हुई थी, देखें उसने कभी स्टोन में मेरे साथ बात नहीं की। इस तरह छोटी छोटी बातें बता के अगर दूसरे की तारीफ़ की जाए तो इसे मोटिवेशन होता है। बग़ैर वजह बताए तारीफ़ करेंगे तो लोग सोचते हैं कि फेवरेटिज़म है, लेकिन जब एक जनरल वजह सामने पता लगती कि फलां ऐसा है, अगला खुद ही सोच लेता है मैं तो ऐसी नहीं हूँ, चलो मैं ठीक करती हूँ अपने आप को ताकि मैं भी ऐसी हो जाऊँ। इस तरह सब में शौक़ पैदा होगा कि इनको भी इन सिफ़ात से मुज़य्यन होना है, यानी अपने अंदर ये सिफ़ात ये क्वालिटीज़ पैदा करनी है। इसी तरह बिला वजह और किसी मसलहत के बग़ैर मुकर्रा बारी को आगे पीछे ना करें, यानी बारी थी कि आज किसी एक स्टूडेंट को सुनाना है, दूसरे को कल सुनाना है, तो अब करनी जिसको कल सुनाना है तो वो आज सुना दे, जिसको बाद में सुनाना है चलो मैं उसका पहले सुना लूँ, ऐसा ना करें। हाँ कहीं वजह हो मसलहत हो तो हो भी सकता है, जिस तालिब इल्म की जिस दिन बारी हो इसी को पढ़ने दें, हाल बताकर वो ख़ुद किसी दूसरे को इजाज़त दे दे तो कोई हर्ज नहीं। आगे इसका ज़िक्र आएगा इंशाल्लाह मज़ीद। उस्ताद को चाहिए कि हाज़रीन दर्स से अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक़ का इजहार करें, जो गायब हो यानी सबक में गैर हाजिर हो इसका अच्छे अंदाज में नाम ले। नीज़ उस्ताद के लिए मुनासिब है कि स्टूडेंट से उनके नाम, उनके नसब और वतन वग़ैरह के बारे में पूछे और इनके हालात दरियाफ्त करे और इनके लिए अक्सर व बेशतर खैर की दुआ करता रहे। जी अब आप देखिए कि इसमें भी यानी मैं हंस इसरे रही हूँ कि अगर लोगों से कहानियाँ यानी उनका पूरी ये बातें पूछने लगें तो हो सकता है कि बाज़ दफ़ा फिर इतनी लंबी लिस्ट हो जाए कि असल काम की बात ही ना हो सके, लेकिन मुनासिब हद तक ऐसा होना चाहिए। इसमें अमूमन ये किया जा सकता है कि इंडिविजुअल बेस पर बात कर ली जाए, जैसे टर्म्स रख लें कि अच्छा फ़र्स्ट 10 स्टूडेंट से इस वीक में हम बात करेंगे, फिर उनसे पूछना अच्छा कैसी हैं, खैरियत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्लास कैसी लगती है, अच्छा कैसी हैं आप, पाकिस्तान से हैं, कहाँ से। इससे क्या होता है कि पता चलता है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, और हर उस्ताद का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने स्टूडेंट्स के साथ वन ऑन वन बेस पर रब्ता रखे। ठीक है अल्लाह करे बरकत भी दे, हज़ारों पढ़ें, हर जगह मुमकिन नहीं भी होता, लेकिन एटलीस्ट किसी लेवल पे जाके ज़रूर बात करने का एहतमाम होना चाहिए, वरना बहुत सारी बातें स्टूडेंट्स के दिल में ही रह जाती हैं, वो कह ही नहीं पाते, हसरत होती है हम उस्ताद से बात करते, और उस्ताद को कोई इतना हवा भी नहीं बना देना चाहिए कि नहीं 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 वो नहीं अवेलेबल, वो बात नहीं कर सकते, वो बिज़ी हैं, वो बिज़ी हैं। देखिए जो इल्म का काम करता है ना उसका काम ही इल्म का होता है, जैसे उसको किताब पढ़ाने के लिए अगर पहले ख़ुद पढ़ने की ज़रूरत है ना, सबक तैयार करने के लिए, लेक्चर तैयार करने के लिए उसको ज़रूरत है, तो इस तरह ये भी चीज़ उसके फ़र्ज़ में कि जिनको सुना रहा है उनको भी तो जाने। ये वक्त का ज़िया नहीं होता कि अगर एक स्टूडेंट एक उस्ताद से बात कर लेता है या उसे मशवरा तलब कर लेता है या कभी हंस बोल के बैठ के बात कर लेते हैं। उस्ताद के साथ तो हंसी बोलने में भी इंसान सीखता है, उसके साथ तो खाने पीने में भी इंसान सीखता है, कुछ ना कुछ हो तो एक दिन साथ गुजारने से भी इंसान कई बातें सीखता है। तो लिहाजा फॉर्मल से हट के भी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर आप देखिए कि इस पूरे हिस्से में से अगर हम कुछ बातों को थोड़ा सा हाईलाइट करके देख लें तो आप देखिए कि जैसे माँ के बच्चे होते हैं ना, हर बच्चा माँ को प्यारा है, हर बच्चे को माँ ने एक ख़ास वक्त तक पेट में रखा, हर बच्चे के दर्द सहे, उसको दूध पिलाया, उसकी तरबियत की, मोहब्बत है ना। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि हर बच्चे में मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं, कोई बोल्ड है तो कोई झुकाव है, कोई ज़रा शार्प है तो कोई दबाव है, कोई सेहतमंद बड़ा है तो कोई बीमार बहुत है। आप ख़ुद अपने लिए सोचें कि माँ होने के नाते मुख्तलिफ़ बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ फीलिंग्स आती हैं कि नहीं आती? आती हैं, नेचुरली आएंगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी कोई राय ना हो, आप अकेले बैठ के सोचें ये बच्ची मेरी ऐसी है, ये दूसरी ऐसी, देखो ये बेटा कितना अच्छा है। आप मुंह से ना कहें, इजहार ना करें, लेकिन आपके दिल को ज़रूर पता होता है कि बच्चों में कोई ना कोई बात फ़र्क है ना। इसी तरह उस्ताद के दिल में भी शागिर्दों के लिए होता है, इज़ वेरी नेचुरल और होना चाहिए, इसलिए कि हर चीज़ अपनी जगह बनाती है। और आप देखिए कि जैसे रिस्क हमारे मुकर्रर है ना, हम अपने हिस्से का रिस्क खाते हैं, हम सोचते हैं खाना पीना और दिस एंड दैट, लेकिन एक लफ्ज़ नोट कर लें, मोहब्बतें भी रिस्क होती हैं। कोई इंसान कितनी मोहब्बत पाएगा ये भी लिखी हुई है। कुछ मोहब्बतें कस्बी होती हैं, कुछ वह भी होती हैं। कस्बी कौन सी होती हैं जिसके लिए कुछ लोग मेहनत करते हैं, उनका अपना एटीट्यूड, उनका टॉकिंग, उनका वे, उनकी मेहनत, उनकी दिल लगन, उनका केयरिंग होना, उनका बहुत ज़्यादा, बस बच्चे माँ के लिए इतने केयरिंग होते हैं, हर वक्त माँ के हाथ चूमते रहते हैं, मम्मी पानी ला दो, मम्मी ये कर दो, फितरतन केयरिंग होते हैं। कुछ बहुत मम्मी आपके पाँव दबा दूँ, और कुछ केयरलेस होते हैं। तो जो कस्बी हैं उसमें मेहनत करते हैं, कसब से आप अपनी मेहनत से वो मोहब्बत लेते हैं। कुछ बच्चे खुद ही इतने डिवोटेड होते हैं कि माँ खुद ही उनकी तरफ झुकती है कि ये बच्चा मेरे कितना ख्याल रखता है। इसी तरह मोहब्बतों की एक बांट वहबी होती है, वहब, इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह का नाम है ना अलवहाब, वो देता है, वो सब कुछ देगा, सबको देता है। तो बिल्कुल इसी तरह वो देने वाला मालिक देता है सारी चीज़ों को। इसलिए इंसान कुछ मोहब्बतें फितरतन भी पाता है, कुछ चेहरों पे बड़ी मासूमियत होती है, कुछ बड़े पोलाइट होते हैं। अब उन्होंने नहीं किया अपने आप को ऐसा, वो खुद ही है, अल्लाह ने बना दिया। तो ऐसे लोगों के लिए दिल में जगह अगर है तो मुनासिब मौके पे उनकी तारीफ़ की जा सकती है, लेकिन आम तौर पे ऐसा ना हो कि फेवरेटिज्म का शिकार हो जाए, जो ये कहेगा वो करेंगे, अच्छा जी जो इन्होंने कह दिया वही ठीक है, अच्छा भाई सब इनसे ही पूछ लें। ठीक है, जिनसे मोहब्बत होती है उनका नाम ज़ुबान पर रहता है, और जो खिदमत करते हैं उनके नाम भी ज़ुबान पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि एहतियात ज़रूर रखे, और लोगों के दिल में ख़ुद भी ज़रा ज़र्फ खुला होना चाहिए कि अगर किसी एक को ज़्यादा जगह दे दी तो बजाय इसके ये सोचे, देख हाँ उस्ताद है ना, बस ये सारी क्लास हो ही इनके लिए रही है, देखें ये आएंगे ना तो क्लास होगी, नहीं आएंगे तो सबक ही नहीं होगा, इस तरह ना सोचे। ये आप खुद ही इस बात की दलील दे रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपसे मोहब्बत की जाए। मुझे याद आ गई कहानी हज़रत यूसुफ़ और उनके भाइयों की, यही मसला था उनका भी ना, कि हमारे बाप को यूसुफ़ से बड़ी मोहब्बत है, चलो इसको रास्ते से निकाल दो तो मोहब्बत मिल जाएगी। ऐसे काम करने वालों को कभी मोहब्बत मिलती है? नफ़रतें दे के मोहब्बत लोगे, ये कैसी बातें करते हो। तो लिहाजा अगर किसी इंसान में कोई खूबी है तो आप एडमिट करें, वाकई ये मेरी कुलीग है, ये मेरी साथ पढ़ती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अल्लाह करे मैं भी ऐसी बन जाऊँ। इसीलिए उस्ताद इसका ख्याल करते हैं या इसकी बात करते हैं। तो लिहाजा ये ओवरऑल एक मिला जुला काम है, और इसमें ये करने की ज़रूरत है। फिर ये जो आखिरी हिस्सा था ना, इसको भी देख लेते हैं कि उस्ताद अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ का इज़हार करे। मसलन आप देखिए, आप कहेंगे हाज़रीन है ना या शागिर्द नहीं, सम टाइम आप कहीं लेक्चर के लिए जाते हैं ना, अब आप देखते हैं कि लोग आके बैठे हुए हैं, बात शौक से बैठे हैं, अब आप फर्स्ट टाइम मिले हैं, अब आप जाते के चलें जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, चले दर्स शुरू करते हैं, नहमदुहू व नुसल्लीही अला रसूल करीम, नहीं पहले बॉन्ड तो बनाइए, एक दो प्यार का जुमला तो बोलिए, स्माइल तो पास करें, कैसे हैं आप, कितने अच्छे लग रहे हैं आप, कितने लकी हैं आप इल्म के लिए आए हैं, कितनी देर से आप बैठे हैं, फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं, चलें आप बताइए आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है, अच्छा वो आप बताइए आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, कैसा अच्छा लगता है, किताब कितनी समझ आ, ये 5-6 जुमले आपको घुला मिला देते हैं, आप उस माहौल में एडजस्ट होते हैं। कभी आप कहीं दर्स के लिए जाएं या कोऑर्डिनेशन के लिए जाएं तो जाके स्टेज पे बैठते ही एकदम बात कुरान की या क्लास की ना करें, कुछ नहीं समझ आ रहा मौसम की बात कर लें, सबसे आसान होती है ना, क्योंकि हमारा अमूमन फ़ोन जो होता है वो काफ़ी वक्त मौसम पूछने पर चलता है। एक बंदे से घर के बाद क्या हाल है, ठीक है, अच्छा मौसम कैसा है, फिर उसके बाद किसी दूसरे से बात होती है, क्या हाल है, अच्छा बताओ मौसम, अच्छा खुद भी लोग बताने लगते हैं बड़ी गर्मी हो गई है, बिजली जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है। तो जैसे दुनिया में बीच में सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें आती हैं तो एक चीज़ बनती है ना, इसी तरह आपको भी ये समझ आनी चाहिए। फिर आप देखिए कि बॉन्ड बनाने वाला हो, आप कहीं जाते हैं, मसलन जैसे अभी यहाँ बात है कि अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार करें, जो गायब हो सबक में नहीं उनका पूछे, क्या बात है आज आयशा नहीं दिख रही, फातिमा किधर है आज, खैरियत है, सब खैरियत है, चले दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो खैरियत से हों, कोई मसला ना उनके साथ, अच्छा वो किधर है भाई, मुझे वो परवीन नहीं दिख रही, इस तरह की बातें, ये जुमले आगे पहुँचते हैं, जिनको पहुँचेंगे वो खुशी से सुनेंगे, अच्छा मुझे याद किया था उस्ताद ने, अच्छा उस्ताद टीचर ने मेरा नाम लिया था, मोहब्बत होती है इन बातों को सुन के। अच्छा मेरे बारे में पूछा ही नहीं, मैं इतने दिन से जा नहीं आ रही थी, मुझे सुने नहीं। फिर इसी तरह जब आप जाएं और वहाँ देखें कि कोई स्टूडेंट बहुत दिन के बाद दिखे ना, फिर आप सबके बीच में बल्कि पूछे, अरे खैरियत तो थी, आप कहाँ थी, सब ठीक है ना आपके साथ, अच्छा चले क्लास के बाद बात करेंगे। बस अब कहानी ना शुरू हो जाए कि वो फिर आधा घंटा उसमें लग जाए, मैं यहाँ थी, मुझे ये हुआ। बस आपको ऐसी बात करनी आनी चाहिए कि दूसरा लंबी बात कर ही ना सके। वाइंडिंग अप स्टाइल करें अपना, इतनी लंबी बात ना करें कि लोग दूसरे उलझ के रह जाएं आपकी बातों से, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि जैसे कहीं भी आप जाते हैं ना, फिर जब ख़त्म हो आपका दर्स या बात ख़त्म हो स्टूडेंट से, तो फिर आप उसके बाद फिर दो तीन अच्छे जुमले बोलें। कहीं भी दर्स करने के लिए या टीचिंग के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, आप नोट करेंगे, वो इस बुक से एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, स्टार्टिंग और एंडिंग। पारे का स्टार्ट, पारे का एंड, दर्स का शुरू, दर्स का एंड। ये दो अगर आपने इंटरेस्टिंग बना लिए ना, शुरू का हिस्सा इंटरेस्टिंग इंजॉइंग डिटेल्ड बात दिल में उतरने वाली, और एंड पे एब्जॉर्बिंग, जो कहा है जो सुना है वो दिल में जाए। और जब शुरू में आप, मिसाल है कि वही चीज़ बाद में सीडी में आती है, लोग सीडी लगाते हैं, लो मैं सुनूं, आप शुरू में अगर आप जा रहे हैं तो लंबी तर्जमे पढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, भाग रहे हैं ना, तो कहेगा ये तो कोई इतनी बात नहीं होगी। नहीं, शुरू में अच्छी बात करें जिस वजह, फिर बाद में आप देखिए कि लोग थकने लगते हैं। दूसरी बात है टाइम कम होने लगता है, घड़ी में नज़रें लगती हैं, ठीक है, जाने की जल्दी है। तो फिर बीच के जो हिस्से होते हैं ना, यानी मिड के बाद जब बात, जैसे एक घंटे का लेक्चर है तो बीच का जो फिर 15-20 मिनट शुरू में मोटिवेशनल बात करें, फिर बीच में आपको लग रहा है कि नहीं आपने तो 20 पॉइंट्स देने थे और अभी तो सिर्फ तीसरे पॉइंट पे हूँ, तो फिर जो फोर्थ पॉइंट से लेके आगे के समझें कि जो पॉइंट होंगे ना 17 तक के पॉइंट्स, वो आप ब्रीफली दे दें। अच्छा इससे ये भी मिलता है, इसकी ये दलील है, ये हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह, चले अगले पे चलते हैं। फिर लोग भी खुश होने लगते हैं कि देखा स्पीड बढ़ गई है, वरना लोग बाज़ वक्त यही सोच रहे होते हैं, हाय ये पूरा कब करेंगी, ये ख़त्म तो होगा नहीं आज। आपको पता है कि साथ जहन बड़े चलते हैं, लोग बहुत कुछ सोचते हैं, और उस्ताद के अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों के जहन पढ़ सकें, ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं। फिर उसके जब आखिरी दो तीन पॉइंट हो ना, अब आप लो डाउन करें, अब लोगों को भी तसल्ली है ख़त्म हो रहा है, टाइम भी आपके सामने है, अब आप पहले से ऐसा सेटल करें कि आखिरी दो तीन पॉइंट्स को बड़ी अच्छा एलैबोरेट करें। क्यों? कि उठ के जाते वक्त भी कुछ लेके जाएं। आखिरी जुमले ऐसे सेंटिमेंटल होने चाहिए कि सुनने वाला के वाकई मुझे इसकी ज़रूरत थी, ये नहीं कि आखिर में के चले आखिरी, आखिरी का तर्जमा आप घर से जाके पढ़िएगा, खुदा हाफिज़ सुभानक अल्लाहुम्मा वबी, नहीं किसी उलझन में ना छोड़ें, कम बात कर लें, बहुत भागते हुए बात ना करें, बहुत तेज़ ना बोलने का अंदाज़ हो कि लगे कि बस एक चल पड़ी एक सिलसिला, नहीं स्लोली स्लोली करें, कम बताएं लेकिन अपने अंदर अच्छा रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर सुनने वाले फ़ायदा लेंगे। और ये जो बात थी कि घर और वतन की बातें पूछे, तो ये जस्ट एक लोगों को अपने से यूज़ टू करने के लिए होता है। अब देखिए कि जब आप इस फील्ड में आएंगे इंशाल्लाह तो आप खुद ही देखेंगे, मैं तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करती हूँ इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ, कि जब आप बिल्कुल नई जगह पे जाते हैं ना, जहाँ आप किसी को नहीं जानते, आप गए और आपके सामने 20 लोग बैठे हैं, 25 बैठे हैं, 100 बैठे हैं, वट एवर डजंट मैटर, अब आप जब उनको जानते ही नहीं, किस लेवल के, किस कैलिपर के हैं, तो कैसे बात करेंगे। हो सकता है आप सोचें ये न्यू कमर्स हैं और आप सारी बेसिक बातें करें, बाद में ओके नहीं दर्स तो अच्छा था लेकिन सारी बातें पहले पता थी। और बाज़ दफ़ा आप ओवर एस्टिमेट कर लें, पता चले कि जी आपने तो उनको बहुत समझा कि ये तो माशाल्लाह बड़े क्लासों में जाने वाले लोग हैं, दर्स सुनते सुनाते हैं, इनको क्या बताना है, इनको ज़रा अहम बातें बताओ, पता चले लोगों को दर्स तो अच्छा था लेकिन ज़रा मुश्किल बातें थी। तो जानना ज़रूरी होता है, जान पहचान करें। इसका अमूमन एक तरीका ये होता है कि जब कोई लेने के लिए आपको आता है ना, यानी जहाँ आप दर्स करते हैं, यानी मैं अपना अमल बताती हूँ आपको, चले कि जैसे कोई दर्स के लिए मुझे लेने के लिए आते हैं, तो मैं गाड़ी में अमूमन वैसे ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि मेरे दिल में होता है कि मैं एक ख़ास मूड बना के दर्स के लिए जाऊँ या जो भी पढ़ाना है। लेकिन जहाँ मुझे लगे कि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ या मुझे नहीं पता, तो जो लेने आती है ना खातून या जो कोऑर्डिनेटर होती हैं, जो ऑर्गेनाइज़र होती है, फिर मैं उनकी बात करती हूँ उनसे, अच्छा कैसे लोग आ रहे हैं, अच्छा आपके क्या कम्युनिटी, अच्छा कोई और भी क्लास होती है, अच्छा कैसा लोगों का ट्रेंड है, कुरान पढ़े हुए, ये छोटी छोटी दो चार बातें पूछ लेना, फिर आपको इंशाल्लाह बाकी चीज़ों के लिए मदद देता है। इससे क्या होता है कि लोगों को बिल्कुल ये लगता है कि दर्स आपके लेवल पे हो के आया है। बस वो लोग ये जुमले बोलते हैं ना, बिल्कुल सारा दर्स तो मुझे लग रहा था मेरे बारे में था, क्योंकि आपके लेवल पे आ गया ना। तो बहरहाल ये चीज़ एक अच्छी होती है जिससे फिर दरस व तदरीस का जो सिलसिला है वो ज़्यादा मुअस्सर होता है और लोग उससे फिर ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, स्टूडेंट्स के हालात और हरकत पर कड़ी नज़र रखें, यानी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके कंडीशंस क्या हैं, क्या सरकमस्टांसेस हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का तरीके क्या है, इस पे भी नज़र रखें। सिर्फ बैठ के बंद किताब पढ़ाता ना जाए, यानी किताब के तरफ ही ना लगे, देखें लोग कर क्या रहे हैं, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी हम बात कर लेंगे मज़ीद। उस्ताद को चाहिए कि वो हर लिहाज से स्टूडेंट्स के हालात यानी उनके तौर तरीके, अखलाक व आदाब का ख्याल रखे, यानी उनके मैनर्स, उनके एटिकेट्स। जिस स्टूडेंट से कोई हराम या मकरूह काम सरजद हो या कोई ऐसी हरकत उससे हो जाए जो इसकी हालत को बिगाड़ देने वाली हो, या उसने किसी उस्ताद वग़ैरह की बेअदबी की हो, या बेफ़ायदा ज़्यादा बातें करता हो, या बड़ा बातूनी हो, या ऐसे लोगों के साथ मेल जोल रखता हो जिनके साथ मेल जोल रखना मुनासिब ना हो, आगे आएगी इसकी बात, तो टीचर को चाहिए कि जिस स्टूडेंट से ऐसी कोई हरकत सरजद हो जाए इसकी मौजूदगी में इन बुरी हरकत से मना करें, लेकिन इसी स्टूडेंट को मुतय्यन करके मलामत का निशाना ना बनाए, पॉइंट आउट ना करें, लेकिन जब उसकी क्लास में वो शख्स मौजूद हो तो उस टॉपिक पर बात ज़रूर करें कि इससे ऐसा होता है, नाम ना ले ना उसको देखे, जी समझ में, यानी वो ज़िक्र ज़रूर करे उस ख़ास बुराई का लेकिन उसको पॉइंट आउट ना करें, इशारे से समझाए, अगर वो बाज ना आए तो इसे लहदगी में समझाए, और अगर वो इशारे से समझ सकता है तो इशारे से समझाए, अगर वो फिर भी बाज ना आए तो सबके सामने मना करें, अगर मुनासिब ख्याल करे तो ज़रा सख्त लहजे से कहे ताकि तमाम स्टूडेंट्स अवेयर हो जाएँ और एटिकेटेड हो जाएं, बादब हो जाएं और उनको इस बात की समझ आ जाए। अगर फिर भी सरकत से बाज ना आए तो इसको इस अपने हाल पर छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं और इससे मुंह मोड़ ले यहाँ तक कि वो बाज आ जाए, यानी फिर इग्नोर करो, अवॉइड करो उसको, कम बात करो, उसको खुद ही पता चले कि उस्ताद मेरे से कम बात क्यों करता है, तो फिर इस तरह वो खुद ही सोच के उस चीज़ को छोड़ देगा। ख़ास तौर पे जब टीचर को इस चीज़ का डर हो कि इसका कोई साथी इसे असर कबूल कर सकता है, यदि जो बुराई इसमें है वो दूसरे स्टूडेंट्स में भी आ सकती है, इस तरह इनकी खबरगिरी करता रहे जिस तरह वो आपस में एक दूसरे के साथ सलूक करते हैं, जैसे इस्लाम को रिवाज देना, अंदाज़े तखातुब का पसंदीदा होना, खिताब करने का यानी किसी को एड्रेस करने का तरीका, आपस में मोहब्बत और ताल्लुक कायम रखना, नेकी और तकवा के कामों में मदद करना वगैरह। खुलासा यह है कि जिस तरह इनको दीनी मसलहत की तालीम दे कि इनका अल्लाह ताला के साथ कैसा मामला होना चाहिए, इस तरह इनको दुनियावी फ़ायदों की तालीम भी दे कि आम लोगों के साथ इनका रवैया और सलूक कैसा होना चाहिए ताकि सआदत दारैन से फैज़ हासिल कर सके, दोनों जहान की सआदत दारैन के दोनों जहान यानी दुनिया और आखरत इनसे भी फ़ायदा उठा सके। तो इस हिस्से का खुलासा क्या है कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ पता हों, उसको पता हो कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। मैं इसकी प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल दूंगी, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी, बड़ी क्लास की जो ख़वातीन हैं वो मोस्टली संजीदा होती हैं और उनकी उम्र का तकाजा है कि वो संजीदा हो जाए, अब ना भी हुई तो फिर कब होंगी, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उठते ऐसे इखलाकियात किस्म के, लेकिन जो यंग बच्चियों की क्लास होती है ना उसमें ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। वजह क्या है कि बच्चियाँ एक ख़ास माहौल से आती हैं, फिर दूसरी है कि बाज़ दफ़ा उन्होंने दीनी तालीम को इस तरह लिया नहीं होता, फिर दीन के नाम पे अगर किसी सैटरडे या संडे स्कूल में जाती भी हैं तो वहाँ भी मोस्टली कुरान तो नहीं बराह रास्त होता ना, तो वो बिल्कुल उसको उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे अपने रेगुलर स्कूल्स में कर। फिर निज़ाम तालीम का भी एक अंदाज़ा है कि जैसे उस्तादों के नाम लेना, उनके सामने पाँव ऊपर करके बैठ जाना, उस्ताद नीचे बैठे हैं आप ऊपर बैठे हैं, उस्ताद पीछे हैं आप आगे बैठे हैं, ये चीज़ें यहाँ बुरी नहीं समझी जाती ना, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम उठते हैं। मसलन लिख के बातें करना, सेल फोन पर टेक्स्ट मैसेजेस करना, घड़ी देखना, टेबल के नीचे से कुछ पास करना। अब इस वक्त भी मैं जहाँ से आपसे बात कर रही हूँ ना तो ये क्लासरूम है मेन जहाँ मैं बैठ, और हमारे पास जहाँ जो ऑन साइट क्लासेस होती हैं तो उसमें जब क्लास होती है तो स्टूडेंट्स के सामने टेबल रखे हुए हैं ना, टेबल और चेयर्स हैं। अल्लाह का हुक्म ही ऐसा है, या मैं सोचती हूँ कि इंसान को कैसे अल्लाह ताला सुझा देता है, मैं हालांकि काफ़ी बड़ा हॉल है लेकिन मुझे यहाँ बैठी हुई हर स्टूडेंट के ऊपर मेरी नज़र रहती है। मुझे एक लम्हे में पता चल जाता है कि ये नोट्स ले रही हैं या आपस में लिख के बातें कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे पोज करती हैं बाज़ दफ़ा बच्चियाँ कि बड़ी नोट्स ले रही हैं लेकिन वो असल में अपनी साथ वाली को ख़त लिख रही होती हैं। पर्चियाँ पास की जाती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ जान के चीज़ गिराएंगी नीचे ना, ऐसे लगेगा बुक गिराई है तो वो दूसरी पीछे वाली उठा लेगी। मुझे पता चल जाता है कि इसमें इन्होंने कोई मैसेज दिया इनको। ये कभी शुरू में होता है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चियाँ आती हैं समझदार हैं, लेकिन शुरू में काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम होते थे। फिर लेटर्स लिखती थी, फिर एक दूसरे को बातें करती थी, तो ये चीज़ पता चलती है और वो फिर हैरान भी होती हैं कि आपको पता कैसे चलता है। मैं खुद ही कह देती आप बताएं आप क्या लिख रही थी, उसके साथ जो खड़ा मैं उसको कहती इनकी नोटबुक लाएँ, और बाद दफ़ा वो नोट्स की जगह पता नहीं क्या क्या कहानियाँ लिखी होती हैं। तो ये चीज़ नज़र में रखनी चाहिए वरना आप देखिए कि आप नहीं पढ़ा सकते, लोग आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। आप कहेंगे माशाल्लाह आज तो इन्होंने बड़े नोट्स लिए, बस दफ़ा वो कुछ नहीं होता। देखिए फिर बस बच्चियां जब जवान होने की उम्र पे आती हैं ना तो उनकी नज़रें भी बदलने लगती हैं, अजीबोगरीब किस्म की जज्बात दिल में आते हैं, वो भी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इसलिए आप अगर कहीं भी ऐसे काम पर असाइन हो तो ज़रूर देखें कि आप क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कौन क्या हो रहा है। इसका आसान सा तरीका एक ये हम करते हैं कि भाई सेलफ़ोन कमरे में ना आने दें, फिर भी पता नहीं कैसे लोग ले आते हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि 6 साल के बच्चे के पास भी सेलफ़ोन क्यों है। वो मम्मी को फ़ोन करना था, भाई आपको क्या कहना है उनको, क्लासरूम में आने के बाद आपने क्या कहना है, रिसेप्शन पे रखें उनको बताएं अगर कोई काम है, और घर वाले भी वहीं फ़ोन करें आपको नहीं करें। तो ये रूल्स होते हैं ये फिर ज़िंदगी में फ़ायदा देते हैं और इनसे इंसान सीखता है। तो और इन सारी चीज़ों की अपनी अपनी जगह पर अहमियत है, कोई ये ना सोचे कि ये चीज़ें जो हैं बस ऐसी हैं और बस ये आप पढ़ाएं जल्दी करें जी ख़त्म करें, क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नहीं, फिर बाज़ दफ़ा लोग एक दूसरे की चीज़ें उठा लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उस्ताद की नज़र चारों तरफ हो। अच्छा जो बातें मैं उस्ताद के नाते से कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि यही बातें बच्चों की तरबियत के लिए भी आप नोट करें। माँ को भी आँखें खुली रखनी चाहिए, बहुत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ब्लाइंड ली जैसे आप बच्चों को देखें, नहीं मेरी बच्ची कुछ नहीं कर सकती, ये बड़ी अच्छी है ये बहुत है। मैंने देखा है बाज़ बच्चियाँ शक्ल से इतनी सीधी लगती हैं, लगता है कि कुछ इनको नाम नहीं अपना लिखना आता, लेकिन सिर्फ दोस्तों की और इधर उधर की बातों की वजह से गलत चीज़ों में चली जाती हैं। अच्छे अच्छे घरों की बच्चियाँ चीज़ें चुरा लेती हैं, ये एक आम बात है, इसलिए कि अल्लाह का खौफ नहीं है ना। तो उस्ताद सब तरफ देखे फिर नज़र रखे उन पर। फिर ये जो बात है कि पहली गलती पे सबके बीच में जनरली बताए, फिर दूसरी पे उसको अकेले में बताए, तीसरे में फिर उसको डांटे, ये जो लेवल्स आपने इसमें देखे तो इस पर भी थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है। मसलन जैसे प्रैक्टिकल बात करूँगी हमारे अपने यानी इस काम के सिलसिले में, जैसे अब हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं ना कि आप शेयरिंग कीजिए, माइक पर आइए। अब जब स्टूडेंट्स माइक पर आते हैं ना तो बाज़ दफ़ा वो बिल्कुल सही तरीके से बात नहीं करते, वो इमोशनल होते हैं, शेयर करना चाहते हैं, समझ आ रहा होता है कि दे आर वेरी इमोशनल, बाज़ दफ़ा रो भी रहे हैं दूर। लेकिन हर बंदे को अभी इस चीज़ की समझ नहीं होती कि मेरी बात कितने लोग सुन रहे हैं, मैं कैसी बात में बात करते हुए लग कैसी रही हूँ। माइक पर आएँ या फ़ोन करें, बाज़ लोग फ़ोन करते हैं ऐसे लगता है एक ट्रेन शुरू हो गई, ना अगले से पूछना ना लेना ना देना, कहानी शुरू हुई, बोल रहे हैं तो तिस तिस बोल रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये फीलिंग आने लगती हैं कि इनको ये नहीं पता कि हम उस्ताद से बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी उस्ताद का फ़र्ज़ होता है सिखाना। अब मिसाल है कोई स्टेज माइक पे कोई आके बोला, अब वो बात महसूस की उस्ताद ने कि भाई ये बात जो इसको इतनी लंबी इसने बात क्यों की, एक ही बात 3 दफ़ा दोहरा दी कि सुनने वाले ऑफेंड हो रहे हैं और टाइम वेस्ट हो रहा है और इतना कीमती वक्त है। अब एक तरीका क्या है कि आप फ़ौरन माइक पकड़ें उसके बाद और माइक पे आ करके जी शुक्रिया, देखिए ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, आपने इतनी लंबी बात कर दी, इतनी बड़ी बात कर दी, इसका क्या नतीजा होगा कि जिसने बात की वो अगली दफ़ा माइक पे ही नहीं आएगा। बात लोग डायरेक्ट टॉन्ट कर देते हैं, मैंने देखा है बाज़ टीचर्स को भी देखा है कि वो सबके बीच में टोकते हैं, यानी मिसाल है किसी का सेलफ़ोन बज गया उसी वक्त फिर वो कहते हैं अच्छा भाई सेलफ़ोन वाले बाहर चले जाएँ, या बाज़ लोग सबके बीच में उठा देते हैं चलें जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनना बाहर जाएँ। किसी की ईगो नहीं हर्ट करनी चाहिए, इसका तरीका क्या होता है करना भी ज़रूरी, ये भी दूसरा राय ये है कि आप कुछ ना कहें, चलो कोई बात नहीं इनकी नीयत तो अच्छी थी खुद ही समझ जाएंगे, नहीं वो कभी नहीं समझेंगे, जब नहीं समझे वो बाद में कौन समझेगा। उसका तरीका क्या है, यानी उसके गलत की ना आप अपने बस नोट कर लें कि इसने ये बात की, अब ये मुझे किसी वक्त समझानी है, फिर आप उसको बात लिखें नेक्स्ट अगला माइक पर आए, 2 3 4 5 लोग आ जाएँ जब फिर एंड पे उस्ताद बात जनरल बात करें, उसमें वो सारे पॉइंट्स को इशारतन बता दे वो पंचों समझ जाएंगे कि ये बात मेरी है, ये दूसरे की होगी, ये तीसरे की, लेकिन कोई हर्ट नहीं होगा। या जनरल कभी किसी और मौके पे बात कर ले ताकि फिर पर्सनलाइज भी ना हो और बात भी पहुंच जाए। और बाज़ वह वाकई इंसान सोचता है कि नहीं ये खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन बाज़ लोग नहीं समझते, उनको बताना ही पड़ता है। तो उस्ताद फिर उनकी इसलाह करे, अल्लाह करे कि हमें इन सब बातों से फ़ायदा हो। चलिए फिर यहाँ रुक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट और पूरा हुआ उसमें, तो ठीक है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।